हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन में बहुत नटखट थे, उसका चर्चा हम कल किया। बल्कि जब महाप्रभु का उम्र थोड़ा बड़ा बढ़ गया तो बहुत विद्वान बन गए। महाप्रभु ने निमाई पंडित बन गए। जो एक बार सुनते थे बस वो याद कर लेते थे, श्रुतिधर। सबसे पहले तो ये सवाल आता है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? परमेश्वर भगवान। तो भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानते हैं, तो भगवान के लिए श्रुतिधर बनना कोई असंभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक पढ़ाई, जब पहले पढ़ाई होता है चौपाठी में, चतुष्पाठी कहता है संस्कृत में, चतुष्पाठी। वहां चतुष्पाठी में व्याकरण का अध्ययन होता है। तो व्याकरण अध्ययन समाप्त करने के पश्चात महाप्रभु खुद पढ़ाना शुरू किया। साल उम्र उस समय 11-12 साल का था चैतन्य महाप्रभु। तो और वैसे न्याय शास्त्र पढ़ना शुरू किया। नवद्वीप न्याय शास्त्र के लिए उस समय बहुत प्रसिद्ध था। नवद्वीप में न्याय का चर्चा होता, न्याय षड् दर्शन का एक अंग है। न्याय षड् दर्शन है, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग और वेदांत। ये हैं 6 दर्शन, उनमें से एक है न्याय। तो नवद्वीप उस समय न्याय शास्त्र का बहुत प्रसिद्ध स्थान था। पहले न्याय का स्थान था मिथिला, न्याय का चर्चा मिथिला में होता था। बल्कि सार्वभौम भट्टाचार्य मिथिला में पढ़ने को गया, और मिथिला के जो पंडित लोग थे सब वो चाहते थे कि न्याय का क्षेत्र केवल मिथिला ही रहेगा। तो इसलिए पढ़ाई करने के लिए आता था, बल्कि कुछ लिख के वहां से नहीं ले जा सकता था, ताकि न्याय का चर्चा केवल मिथिला में ही होते रहे। बल्कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या किया, वो सारे पुथी जो था, सारे शास्त्र लिपि जो था, सब चुरा के ले गए। कैसे चुरा के ले गए? कागज में लिखे नहीं, यहां पर लिखे। वो भी श्रुतिधर थे, जो पाठ किया सारे पाठ वो एकदम कंठस्थ करके स्मृति में लेकर आए, और नवद्वीप में उन्होंने न्याय का चर्चा शुरू किया, न्याय शास्त्र का अध्ययन पाठशाला शुरू किया था। बल्कि मिथिला का पंडित इतने हिंस्र थे, इतने निष्ठुर थे कि वो लोग ये को हत्याकारी को भेजा सार्वभौम भट्टाचार्य को हत्या करने के लिए, क्योंकि ये जो न्याय का शास्त्र चुरा के ले गया उसको उनको रोकने के लिए उनको मारने का प्रयत्न किया। बल्कि जो लोग उनको मारने को आया था, जो खूनी लोग जो आया था, तो सर्वभौम भट्टाचार्य को देख के उनका मन में ऐसा एक भावना आया, वो उनका पैर पर गिर पड़ा और उनको बता दिया कि क्यों पंडितों ने उनको भेजा था। और बोला, देखिए मैं तो, मेरा तो मन का मनोभाव बदल गया है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि मैं जब विफल हो गया, ये जब उनको पता चलेगा तो और किसी को भेजेगा, तो आप यहां से चले जाइए, आप यहां मत रहना नवद्वीप में। तो सर्वभौम भट्टाचार्य उस समय नवद्वीप से जगन्नाथ पुरी चले गए थे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य का साथ महाप्रभु का बाद में मुलाकात हुआ था, वो विचार हम बाद में करेंगे। तो कहना ये है कि नवद्वीप उस समय न्याय का लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान था। तो चैतन्य महाप्रभु न्याय पढ़ना शुरू किया और महाप्रभु का सहपाठी थे रघुनाथ शिरोमणि। तो रघुनाथ वो भी बहुत बड़े पंडित थे, महाप्रभु से थोड़ा सा उम्र में थोड़ा बड़ा था, बल्कि वो ताज्जब बन जाता था जब देखता कि निमाय का विचार कितना सरल है, सुंदर है और कितना गंभीर है। जो विचार उनको समझने के लिए सारा दिन लग जाता था, एक बार सुनते ही निमाय उसको समझ लेता था। इसका एक ऐसा एक घटना एक हुआ कि ऐसा एक घटना घटा कि एक दिन रघुनाथ को उनका शिक्षक एक प्रश्न किया और उसको समाधान करने को लिए न्याय का एक समाधान के लिए उनको बोला। सारा दिन लग गया, रघुनाथ को खाने का भी समय नहीं मिला। सुबह से शाम तक सोचते हुए पढ़ते हुए विचार करते हुए अंत में संध्या के समय उसको जो ये था वो लेके गुरुजी के पास गए और गुरुजी को बताया। गुरुजी बोला, हाँ ठीक है, ये विचार तुम्हारा ठीक है। तो घर में तब गया और जाकर खाना पकाया। खाना पका के जब खाना पका रहा था तब निमाय उनके पास आया। तो बोला, आज तुमको खाने को इतना देरी क्यों हुआ? तो बोला, गुरुजी ने मुझे ऐसा एक प्रॉब्लम दिया था, उसको सॉल्व करने के लिए न्याय का विचार का, तो ये सोचते हुए उसको तैयार करते हुए मेरा सारा दिन लग गया। तो महाप्रभु बोला, क्या विचार क्या था, प्रश्न क्या था गुरुजी का? तो वो बताया और सुनते ही निमाय बोला, वो इसका तो समाधान ऐसे है। वो एकदम ताज्जुब बन गया कि हमको ये सारा दिन लग गया सोचते हुए पढ़ते हुए विचार करते हुए और तुम सुनते ही तुम इसको समाधान कर दिया। तो ऐसा था निमाय का मेधा। तो निमाय एक दिन ये बोल रहा था कि मैं एक न्याय का टीका लिख रहा हूं, न्याय शास्त्र का भाष्य लिख रहा हूं, रघुनाथ ने बताया। तो निमाय बोला, मैं भी एक लिख रहा हूं। तो रघुनाथ बोला, हमको तुम बताओ, दिखाओ। तो बोला, ठीक है, कल जब हम जाएंगे तब ये विचार हम तुमको दिखाएंगे। तो नाव में जब गंगा पार हो रहा था, रहते थे गंगा की इस पार और पाठशाला था, गुरु का आश्रम था गंगा के उस पार। तो नदी जब नौका में पार हो रहा था, नाव में पार हो रहा था, तब रघुनाथ को निमाय ने अपना जो ये है वो सुना रहा था पढ़ के। तो अचानक देखा रघुनाथ रो रहा है, निमाय देखा रघुनाथ रो रहा है, तो पूछा रघुनाथ तुम रो क्यों रहे हो? तो रघुनाथ तब बताया, देखो मेरा तो एक बहुत भावना था, एक एम्बिशन था कि मेरा जो ये विचार ये सबसे बेहतर होगा और लोग हमारा गुणगान करेंगे, यशगान करेंगे ये पढ़कर। बल्कि तुम जैसे नाय का विचार टीका लिखे हो, इसके बाद कोई मेरा ये स्पर्श भी नहीं करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोला, देखा ये तो तुमको ये आशा में भंग कर दिया, तो ठीक है चलो। तो ये मैं जो लिखा वो कोई नहीं देखेगा, ये कहकर वो कागज फाड़कर वो गंगा में फेंक दिया। तो रघुनाथ बोला, क्या तुम ये फेंक दिया गंगा में? बोला हाँ, अगर मेरा कुछ त्यागने से अगर तुम्हारा मन का संतुष्टि हो तो इसलिए मैं मेरे दोस्त के लिए ये मैं करने के प्रयत्न किया है। तो इतना ऐसा ही था निमाय का पांडित्य बचपन से ही। और एक बहुत सुंदर घटना घटा था, एक केशव कश्मीरी नाम के एक पंडित, बहुत बड़े पंडित जिनको देवी सरस्वती से बड़ मिला था कि सरस्वती उनका जिह्वा में अधिष्ठान करेंगे, मतलब सरस्वती ही उनके मुंह से खुद बोलेंगे। तो विद्या के अधिष्ठात्री कौन है? सरस्वती है। तो ये बड़ प्राप्त होने के पश्चात ये केशव कश्मीरी सारा भारत भ्रमण करने लगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गया पश्चिम दिशा होकर, और वहां सबको सारे पंडितों को हराया और अब उत्तर भारत की तरफ आने लगा। और बाकी सारे जगह भारत के जितने सारे प्रसिद्ध स्थान था वो सारे जगह के जितने सारे पंडित थे उन सबको पराभूत करके, पराजित करके उन्होंने केवल एक ही स्थान बाकी रह गया भारत का जीतने के लिए, वो कौन से स्थान है? नवद्वीप। और केशव कश्मीरी जब आता था बहुत घमंड के साथ आता था, बहुत बड़े पंडित थे। तो केशव कश्मीरी ने नवद्वीप में आया तो उनका आने का खबर मिलते, केवल अकेला नहीं आया, साथ में हाथी घोड़ा पलकी सारे सब कुछ, हजारों आदमी भी उनके साथ चलता था, बड़े सारा भारत के सबसे मशहूर पंडित है। और सबको ये दिग्विजयी बनने का, जैसे राजा ने दूसरे राजाओं को पराभूत करके विजयी बनते थे वैसे ही पंडितों ने भी वैसे दिग्विजय करते थे, तो वैसे एक दिग्विजयी पंडित था ये केशव कश्मीरी। तो केशव कश्मीरी नवद्वीप में आया, तो केशव कश्मीरी आ रहा है ये खबर मिलते ही सारे पंडित नवद्वीप से भाग गया कि नहीं, क्योंकि ये जब विचार के लिए उनको लालकारा देंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो और जो कोई दो चार पंडित था वो भी घर से निकल नहीं रहे थे। तो केशव कश्मीरी आया, आके सुना कि कोई नहीं है, सब बाहर चले गए हैं, किसी को भतीजा का बहन का शादी है और किसी को मां का बीमारी हुआ है और किसी के ससुराल में कोई निमंत्रण भेजा है, ये सब बहाने से सब भाग गए हैं वहां से। तो केशव कश्मीरी ने वहां प्रतीक्षा कर रहा था कि कब ये सारे पंडित लोग वापस आएंगे तो उनके साथ मुकाबला करके मैं उनको हरा के अब मैं सारा भारत के सबसे मशहूर पंडित बनूंगा, दिग्विजयी पंडित बन जाऊंगा, सारे भारत का एक छत्र सम्राट बन जाऊंगा, ये सोचकर प्रतीक्षा कर रहा था। तो एक दिन शाम को केशव कश्मीरी ने गंगा के तट पर भ्रमण कर रहे थे, तो देखा एक बालक, और कोई बालक 10-20 बालक के वो पढ़ा रहा है, तो आके पूछा तुम कौन हो? तो महाप्रभु ने बोला है कि मैं हूं निमाई, मैं जगन्नाथ मिश्र का पुत्र हूं। और तो क्या कर रहे हो तुम यहां? मैं ये लड़के लोग को पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहे हो? व्याकरण पढ़ा रहा हूं। व्याकरण का क्या पढ़ा रहा? कलाप पढ़ा रहा हूं। तो कलाप जो है वो व्याकरण का प्राथमिक विचार है। तो केशव कश्मीरी ने बोला, ओ तुम हो वो निमाई पंडित? तो महाप्रभु ने बोला, हाँ वैसे तो मैं तो मूर्ख हूं बल्कि स्नेह के नाते, प्यार के नाते सब हमको ऐसे पंडित बोलते हैं। तो केशव कश्मीरी ने बोला, ठीक है चलो तुम्हारे साथ मैं मुकाबला करता हूं। महाप्रभु बोला, मैं आपसे क्या मुकाबला करेंगे? आपको साथ आपका दर्शन जब मिला है तो इसका फायदा मैं उठाना चाहता हूं, आपसे मैं कुछ सुनना चाहता हूं। केशव कश्मीरी बोला, ठीक है बताओ क्या सुनोगे? तो महाप्रभु बोले, ये गंगा जो बह रही है, इस गंगा का महिमा थोड़ा बताइए हमें। तब केशव कश्मीरी ने तत्क्षणात गंगा जिस जैसे बह रही है वैसे ही एक के बाद एक 100 श्लोक उसी वक्त रचना करके सुनाया। सब सुनकर एकदम विमुग्ध हो गया, ये तो ऐसा पंडित हम कभी नहीं देखा, ऐसे कवि कैसे नहीं हम देखा, कभी भी नहीं देखा। तो निमाय भी चुप से वहां बैठे हैं। केशव कश्मीरी सुनाने के पश्चात पूछा, कैसा लगा? तो निमाय बताया, अच्छा ही था। केवल 2-4 गलत छोड़कर अच्छा ही था। तो बोला, देखो मेरा रचना में कभी गलती नहीं होता है, ये गलत समझने का और जो मैं बताया वो उसका भाव समझने का क्या ये है तुम्हारा? तुम तो हो सिर्फ एक व्याकरण का पढ़वाने वाला, कविता का अलंकार तुम क्या समझते हो कि हाँ तुम हमारा ये रचना में गलत और त्रुटि तुम निकालोगे? महाप्रभु बोला, अलंकार तो मैं पढ़ा नहीं बल्कि कुछ सुना है, पंडित लोग जो बोलते हैं उसे कुछ सुना है, सुनने के पश्चात कुछ भावना कुछ धारणा हमको मिल गया है, तो उसके विचार से मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ दोष भी है, कुछ गुण तो है बहुत बल्कि दोष भी है। तो केशव कश्मीरी ने बताया, तुम इसका गुण बताओ और दोष बताओ, गुण बताओ पहले। तो महाप्रभु ने उसका जो गुण था, अच्छा महाप्रभु क्या किया तब, 100 श्लोक बनाए थे, उसमें से जो 64 श्लोक जो था उसको आवृत्ति करके उनको सुनाया। वो श्लोक था, महत्तम गंगायम सततम इदमाभाति नितरां जदेवा श्री विष्णुश्चरण कमल उत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मीरीव शुरनरैवर्च चरणा भवानी भर्तुर्जा शिरसि विभवति अद्भुत गुणा। तो सुनते ही आजब बन गए ये, तुमको कैसे पता? नहीं अब पूछा नहीं, कुछ सुना बल्कि कुछ बोला नहीं। तो महाप्रभु इनमें से छह गुण बताया, इसके अलंकार का गुण इत्यादि। और जब महाप्रभु बोला और दोष, तो केशव कश्मीर बोला मेरा रचना में कभी दोष नहीं होता है। तो महाप्रभु चुप हो गया, तो कश्यप कश्मीरी भी चुप हो गया, बोला दोष समझने वाला तुम कौन हो, दोष विचार करने वाला, मेरा रचना में दोष विचार करने वाला तुम कौन हो? तब महाप्रभु बोला ठीक है, इसमें पांच दोष हैं, तो ये पांच दोष में से अंतिम जो दोष है ये समझना सरल होगा, इसलिए मैं बताऊं। ये विरुद्धमति, ये दोष का नाम है विरुद्धमति। विरुद्धमति का मतलब है कि वो जो विचार जो है वो विरोधी है। जैसा महाप्रभु ने बताया कि आप जो बोला भवानी भर्तुर्जा, भवानी भर्तुर्जा शिरसि विभवति अद्भुत गुणा। तो भवानी, भवानी का मतलब क्या होता है? भवानी है शिवजी, अच्छा, बल्कि शिवजी का मतलब है भवानी का पति। और भवानी शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है? भव है शिवजी और शिवजी का पत्नी है भवानी, तो मतलब क्या हुआ? शिवजी का पत्नी का पति। भवानी भर्ता, भवानी है शिवजी का पत्नी और भर्ता का मतलब है पति। तो शिवजी का पत्नी का पति, इसका मतलब लगता है कि शिवजी का पत्नी का और कोई पति है। भवानी भर्तुर्जा विभवति अद्भुत शिरसि विभवति अद्भुत चरणा। तो केशव कश्मीरी का सर झुक गया, तो वो दुख के नाते घर चले गए और बहुत रोने लगा। सरस्वती का वर मिला था उनको, किसी के पास उसका उनका पराजय नहीं होगा, तो रोने लगा कि तुम अंत में एक बच्चे के पास मेरा ऐसे अपमान स्वीकार करवाया। तब सरस्वती उनके पास आई और बताया देखो केशव, तुम्हारा ये जो पांडित्य है आज ये सफल हुआ, क्योंकि जिनके पास तुम्हारा पराजय हुआ है वो मेरा भी पति है, मेरा भी नाथ है, परमेश्वर भगवान के सामने पास तुम्हारा ये पराजय हुआ है, इसका मतलब है कि तुम्हारा ये पांडित्य है ये आज सफल हुआ, क्योंकि स्वयं भगवान के पास तुमको पराजय स्वीकार करना पड़ा। तो वैसे बचपन से ही हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु कितने बड़े पंडित थे। और एक विचार ऐसे भी हो गया कि देखिए केशव काश्मीरी सारे भारत के सारे पंडितों को हराकर आए थे और उसको महाप्रभु ने हरवाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? महाप्रभु ही सारे भारत के सबसे बड़े पंडित 14 साल की उम्र में ही बन गए थे, कहीं ना जाकर भारत के सर्वश्रेष्ठ पंडित बन गए थे, बल्कि उनका मन में कोई कुछ घमंड नहीं था। और महाप्रभु न्याय का विचार बहुत करते थे। न्याय जो है ये तर्क शास्त्र है, तर्क मतलब डिबेट। तो वहां बड़े बड़े भक्त थे जैसे श्रीवास पंडित आदि। तो भक्त लोग जब महाप्रभु देखते थे कि जब देखता था देखते थे कि महाप्रभु ऐसे विद्या के गौरव में तर्क कर रहे हैं तो उनका मन में कष्ट होता। वो बोलते थे कि निमाई पंडित अगर भक्त बनता था कृष्ण भक्त बन जाता था तो कितना अच्छा होता था, दुनिया में कृष्ण भक्ति का महिमा फैल जाता था। और इसलिए उन्होंने बोलते थे कि निमाय तुम क्यों ऐसे अपना समय नष्ट कर रहे हो, कृष्ण भक्ति करो। निमाय तब बोलता कि हाँ जब मैं कृष्ण भक्त बनूंगा तो ऐसा कृष्ण भक्त बनूंगा कि आप सब आज ही बन जाएंगे, आप सब आश्चर्य हो जाएंगे। फिर भी जब देखते थे निमाय आ रहे हैं तो वो लोग दूसरे रास्ता से भाग जाते थे निमाय के साथ उनको, क्योंकि निमाय मिलने से ही और तर्क का फांकी जो होता है वो उनको चैलेंज करता था, आओ तर्क करें। तो एक दिन श्रीवास ठाकुर ऐसे निमाय को देखते हुए वो दूसरे और चले गए, जाने का ये किया, तय किया। तो निमाय ने तब उनको पीछे गया, बोला मुझे देखकर आप क्यों भाग रहे हैं। तो बोला निमाय तुम हर समय ऐसे डिबेट करते हो, ये करते हो तो हमें ये अच्छा नहीं लगता है, तो कृष्ण भक्ति करो, क्योंकि कृष्ण भक्त ही कृष्ण भक्त बनना ही जीवन का असल उद्देश्य है। शेषे विद्यार फल जानी हो निश्चय, कृष्ण पादो पद में जानो चित्त वृत्ति भाई। सही रूप से ये जान लो कि सारे विद्या का अंतिम फल है कृष्ण भक्ति, भगवान का भक्त बनना ही सारे ज्ञान का चरम समाप्ति है, चरम परिणति है। तब निमाय उनको बोला हां जब मैं भक्त बनूंगा तब आप लोग आश्चर्य बन जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे। महाप्रभु का पिताजी जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया और महाप्रभु का भाई बड़े भाई विश्वरूप भी घर छोड़कर, पहले ही घर छोड़कर चले गए थे सन्यास लेने के लिए। तो पिताजी का भी मृत्यु हो गया, घर में केवल निमाई और उनकी माता सची माता। तो निमाई पिताजी के श्राद्ध के लिए गया गए थे, गया में पिंड दान करने के लिए गए थे। तो वहां उनके साथ ईश्वरपुरी का मुलाकात हुआ और ईश्वरपुरी से उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के पश्चात महाप्रभु में एक परिवर्तन आ गया, बहुत ही परिवर्तन आ गया। वो महाप्रभु एकदम बदल गए, हर समय हा कृष्ण कहकर रोने लगा। ऐसे लगा कि महाप्रभु पागल हो गए, लोग सोचने लगा कि निमाय पागल हो गए, हर समय कृष्ण के ही ढूंढ रहे हैं। तो सब जो साथ में गए थे गांव में वापस लाया, नवद्वीप में वापस लाया उनको, और सब देखा कि एकदम ऐसे लगता है कि पागल हो गया है। और एक दिन निमाय ऐसे रो रहा था, कहां जाओ कहां पाओ ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर मन, कहां मैं कहां जाऊं, कहां जाने से हमको ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को मिलेगा। तब गदाधर पंडित कोई उनको संभाल नहीं सका, तो गदाधर पंडित जो महाप्रभु के बचपन का दोस्त था, थोड़ा सा छोटा था महाप्रभु से, तो उनको पूछा, गदाधर आकर बोला, निमाई कृष्ण को कहां ढूंढ रहे, कृष्ण तो तुम्हारे दिल में है। तो तब निमाई अपना, वो मेरा दिल में है ये सुनते ही वो ऐसे अपना छाती तोड़ने का कोशिश है। तब देखा गदाधर, देखे ये तो और भी मुश्किल हो गए हैं। तो बताया, निमाई कृष्णा अभी गया है, आएंगे अभी आ जाएंगे। तो तब निमाई थोड़ा शांत हो गया। तब सची माता ने देखा कि यद्यपि गदाधर निमाई से छोटे हैं, फिर भी वो बहुत बड़े, बहुत बुद्धिमान है। तो इसलिए गदाधर को बोला, गदाधर हर समय निमाई के साथ रहना, कभी भी उसको साथ मत छोड़ना। तो इसके कारण गदाधर हर समय निमाई के पास ही रहते थे। तो इसके पश्चात महाप्रभु ने नवद्वीप में हरिनाम कीर्तन का प्रवर्तन किया, हरिनाम कीर्तन शुरू किया। श्रीवास ठाकुर जो बहुत बड़े भक्त थे, ऐसे महाप्रभु के लीला में सब ये कौन है ये थोड़ा सा हमें विचार करना शायद अच्छा रहेगा। महाप्रभु है श्री कृष्ण स्वयं, राधा कृष्ण एक होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और जो श्रीवास ठाकुर हम बोला, श्रीवास ठाकुर कौन थे? श्रीवास ठाकुर है नारद मुनि। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के अंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में, उनका अंगन में हरिनाम कीर्तन शुरू किया। रात भर कीर्तन करते थे। जो पड़ोसी लोग था उस समय, तो ब्राह्मण लोग एक जगह रहते थे, ये जो था एक एक जगह में एक एक वर्ण का आवास निवास होता था। ब्राह्मण एक जगह रहते थे, क्षत्रिय लोग एक और एक जगह रहते थे, वैश्य लोग और एक जगह रहते थे, शूद्र लोग और एक जगह रहते थे, और जो इसके वर्णाश्रम के बाहर जो हैं वो लोग और कहीं रहते थे। तो सारे पड़ोसन जो ब्राह्मण थे उन लोग रात को नहीं सो पाता था, इतना कीर्तन होता। तो सब जाके चांद, वहां के जो काजी मतलब मैजिस्ट्रेट था उनको पास जाके अभिजोग किया कि ये निमाई पंडित एक ऐसा कुछ शुरू किया जो सही धर्म नहीं है। शास्त्र में कहीं ऐसे कीर्तन करने का निर्देश नहीं दिया गया, वो कुछ नया धर्म बना रहा है। आप यहां के राजा हैं, आप इसको, ये जो धर्म का अमर्यादा हो रहा है उसको संभालना होगा आपको, ये कहकर चांद काजी के पास जाकर अभिजोग पेश किया। तब चांद काजी अपना सांत्री सिपाही लेकर एक रात महाप्रभु के वहां आया। उस दिन, उस रात को चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं थे। श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन हो रहा था, बल्कि महाप्रभु नहीं थे उस वहां। तो चांद काजी ने आया, आकर वो मृदंग तोड़ दिया और बोला कि आज से अगर कोई ऐसा ये कीर्तन करोगे तो तुम्हारा धर्म नाश कर दूंगा, मतलब तुमको मुसलमान बना दूंगा, तुम्हारा हिंदू धर्म नष्ट कर दूंगा। सब बहुत डर गए। तो वो उसी समय सब कीर्तन बंद कर दिया। तो इसके पश्चात महाप्रभु अगले दिन महाप्रभु के पास सुबह सब गए, जाकर महाप्रभु को बताया चांद काजी ने क्या क्या बोला और क्या किया, मृदंग तोड़ दिया। तो सुनते ही महाप्रभु ने बहुत ही क्रोधित होकर बताने लगा, ये कीर्तन रोकने वाला कौन है, ये कीर्तन जो रोकने का कोशिश करेगा मैं उसको नष्ट संहार कर दूंगा, नाश कर दूंगा। तो ठीक है, तुम लोग सब आज शाम को मशाल जलाकर यहां आना, हम सब चांद काजी के वहां जाएंगे। तो शाम को सारे लोग मशाल जला के वहां आया, ऐसे लगा इतने लोग आया कि लगा कि करोड़ों आदमी वहां आ गए और सब कीर्तन करते करते चांद काजी के वहां गया। जब चांद काजी के वहां गया तो वो सिपाही लोग जो था चांद काजी का सब भाग गया ये देखते ही, और चांद काजी का जो बगीचा था वो सब नष्ट कर दिया, उनका बाहर जितने कुछ था सबको तोड़ दिया ये लोग। और महाप्रभु ने बताया, काजी तुम कहां हो, आओ निकल के आओ। बल्कि काजी उसका प्रासाद के अंदर छिप गया और निकला नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर बताया, देखो तुम्हारा घर में मेहमान के रूप में मैं आया हूं और तुम भाग गए हो, ये कैसी भव्यता है। तो चांद काजी निकल के आया, तो चांद काजी के साथ महाप्रभु का कुछ विचार हुआ। तो विचार के पश्चात चांद काजी ने महाप्रभु को स्वीकार कर लिया और बोला, ये मैं बहुत गलत किया आपको ये कीर्तन में बाधा डालकर, बल्कि आज से मेरा वंश का कोई भी ये कीर्तन में रुकावट नहीं डालेगा, अगर कोई डालेगा तो मैं उसको हमारा वंश से उसको निकाल दूंगा, वो मेरा वंश से भ्रष्ट हो जाएगा। तो चांद काजी का वंशधर अब भी मायापुर में है, यद्यपि मुसलमान है बल्कि वो लोग शाकाहारी है और भक्ति के बहुत मदद देते हैं। तो ऐसे चांद काजी के साथ महाप्रभु का मुकाबला हुआ था। ये चांद काजी भी कौन था? चांद काजी था कंस, कृष्ण लीला में जो था कंस, चैतन्य लीला में वो चांद काजी के रूप में आया था। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। ब्रजेन्द्र नंदन जयी शचीसुत होइल सेई बलराम होइल निताई। बलराम निताई के नित्यानंद महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। उनका जन्म हुआ था एक चक्रा नाम के एक गांव में जो मायापुर से लगभग 150 किलोमीटर का दूरी है। तो एक चक्रा गांव में एक बड़े बहुत संभ्रांत ब्राह्मण थे जिनका नाम था हराई पंडित, और हराई पंडित और उनका पत्नी पद्मावती के पुत्र के रूप में नित्यानंद प्रभु ने आए थे। बचपन से ही वो बहुत सुंदर बालक था। हराई पंडित सब हर समय उनको अपना साथ रखते थे, पल भर के लिए भी उनसे बिछोड़ नहीं हो सकते थे। बल्कि एक दिन जब ये एक दिन एक सन्यासी आए थे और हराई पंडित उनको अपना घर में निमंत्रण किया। तो रात को हराई पंडित के घर में सन्यासी ठहरा, रात भर शास्त्र चर्चा हुआ, भक्ति के विचार हुआ, और उसके पश्चात सुबह जब ये सन्यासी जाने वाले थे तो हराई पंडित ने पूछा मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो तब ओ ब्राह्म ये सन्यासी ने बताया, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आपका ये जो पुत्र है वो पुत्र को दे दीजिए। जिस पुत्र को एक पल के लिए भी जो बिछोड़ नहीं हो सकते थे, ये सन्यासी उनको मांग रहा था। बल्कि हराय पंडित बहुत ही सत्यवादी थे, वो वचन दे दिया कि आप क्या आपको मैं दे सकता हूं। और ये सन्यासी जब अपने लड़का को मांगा तो कैसे उसको उन्हें उनको इनकार करेंगे। तो हराई पंडित ने घर में जाकर, घर के अंदर जाकर अपना पत्नी को भी बताया, तो दोनों ने रोने लगा और बोला कि ब्राह्मण जब सन्यासी जब मांग रहे हैं तब तो देना ही होगा, जाने दीजिए उनके साथ। तो वैसे नित्यानंद प्रभु वो पंडित के ये वो सन्यासी के साथ भ्रमण करने लगा सारा भारत। और भ्रमण करने के पश्चात उन्होंने सन्यास भी लिया और भ्रमण करने लगा। बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन शुरू किया तब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आया, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात हुआ। ऐसे दोनों ने ही एक दूसरे को भाई के रूप में संबोधन करने लगा, अर्थात कृष्ण और बलराम फिर मिल गए। तो नित्यानंद प्रभु के साथ, नित्यानंद प्रभु के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार शुरू किया। और एक व्यक्ति भी आ गए, वो थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर मुसलमान का जन्म हुआ था एक मुसलमान के घर में, बल्कि बचपन से ही वो कृष्ण भक्त बन गया। उनका महिमा बहुत सुंदर रूप से वर्णन हुआ है कि हरिदास ठाकुर को ये भक्ति देखकर बहुत लोग उनको मानना शुरू किया। यद्यपि मुसलमान थे तो बहुत सारे लोग उनको बड़े भक्त के सम्मान दे रहे थे। तो ये देखकर वहां का जो जमींदार थे उस इलाके का, रामचंद्र खान, उनका कुछ ईर्ष्या हुआ था। तो वो सोचा कि एक वेश्या को हरिदास ठाकुर के पास भेजकर उसको पतन घटा के उसको दुर्नाम रटाएगा। तो एक बहुत सुंदरी एक वेश्या को भेजा हरिदास ठाकुर के पास, जहां और दिन भर 300,000 नाम लेते थे, मतलब सुबह से शाम तक केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही केवल उन्होंने जपते थे। बल्कि यद्यपि ओ वेश्या केम टू मेक हिम फॉल डाउन बट शी बिकेम ए डिवोटी ड्यू टू हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर ने बोला कि आपका जितने सारे दौलत हैं ये सब ब्राह्मण और वैष्णव को बांट दीजिए और आके यहां रहकर आप कृष्ण नाम करते रहे। और उन स्थान छोड़कर हरिदास ठाकुर चले गए। तो उसके पश्चात हरिदास ठाकुर नवद्वीप के पास आए, शांतिपुर के पास। वह अद्वैत आचार्य के साथ उनका संपर्क बना। रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में भी उन्होंने गए थे। तो हरिदास ठाकुर जब महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया, संकीर्तन शुरू किया, तो हरिदास ठाकुर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के वहां आ गए। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को निर्देश दिए थे ये कृष्ण भक्ति का प्रचार जगह जगह में करने के लिए। ये हरिदास ठाकुर कौन थे? ब्रह्मा जी। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों ने सुबह निकल जाते थे जगह जगह में प्रचार करने के लिए। घर घर में जाकर सबको बुलाते बोलते थे कि आप सब कृष्ण नाम कीजिए। जारे देखे तारे कहे दंते त्रिनकोड़ी आमारे किलिया रहो आमारे किनिया लहो भजो गौर होगी। आप हरिनाम करते रहे और उस मूल्य से आप हमको खरीद लीजिए। तो उस समय दो बहुत बड़े दुर्वृत्त था वहां, जिसका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में, बल्कि असल में वो बहुत ही डाकू था, बहुत खराब आदमी, बहुत गिरे हुए आदमी थे। वो है जगाई और माधाई, जगदानंद और माधवानंद। नाम असल में नाम था जगदानंद और माधवानंद, बल्कि सब बोलता था जगाई और माधाई। ये जगाई माधाई कौन था? ये जगाई माधाई था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र। ये तीन युग में जय और विजय, वैकुंठ के दारवान दार रक्षक इस राक्षस के रूप में आया था, और इस कली युग में वो जगाई और माधाई के रूप में आया। वो इतना दुर्वृत्त था कि जिसके पास भी कोई नहीं जाता था, क्या करेगा कुछ पता नहीं था। ऐसा बुरा काम नहीं था जो वो लोग नहीं किया, और सुबह से शाम तक वो शराब पीकर एकदम मस्त होके ये करता था, खराब काम करता था। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को देखकर हरिदास ठाकुर को बताया, चलो ये देखो, लगता है कि ये सबसे बड़ा पापी है, अगर इसको हम भक्त बना सकते हैं तो महाप्रभु का महिमा बहुत ही प्रचार होगा। क्योंकि इतने गिरे हुए आदमी अगर भक्त बन जाएगा तो बहुत ये होगा। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को लेकर उनके पास गया, बोला आप क्यों ऐसे पाप काम करते हैं, भगवान को नाम लेते रहिए, सारे पाप का नाश हो जाएगा और आपका जन्म सफल हो जाएगा। तो ये सुनते ही जगाई और माधाई बहुत क्रोधित हो गए, हमें उपदेश देने के लिए आए हो तुम और मार मार इसको बोल के उसको पीछे भागा। और ये देखते ही नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भी भागा हुआ थे। तो दौड़ते दौड़ते दोनों ने एक कुमार की वहां आकर, जहां कुमार का मतलब जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, कलसी वगैरह, वहां जाकर छिप गया और जगाई और माधाई उसको ढूंढ नहीं पाया तो फिर वापस चले गए। तो हरिदास ठाकुर को बहुत गुस्सा हुआ, बोला देखा, महाप्रभु के पास जाके बताया कि आज हमारा जीवन नाश हो जाता था, आज हम मर जाता था, ये लोग हमको मार डालता था जरूर, ये पागल के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके पश्चात जगाई और माधाई, और एक दिन नित्यानंद प्रभु देखा जगाई और माधाई को, फिर जाके उनको बताया, आप क्यों ऐसे बुरा काम करते हैं, भगवान को शरण लेके जीवन सार्थक कीजिए। तो सुनते ही जब देखा कि वो फिर आया है, तो वो उस समय तो बॉटल नहीं होता है शराब का, वो हंडी होता था, तो जो हंडी से शराब पीता था वो हंडी को तोड़ के नित्यानंद प्रभु को मारा, माधाई। और ये जगाई ने मारा तो खून बहने लगा वहां से, सर काटकर खून बहने लगा। ये खबर मिलते ही श्री चैतन्य महाप्रभु वहां आ गए, बोला कि आज हम इसको नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और महाप्रभु ने अपने चक्र को बुलाया, चक्र चक्र जिस चक्र के द्वारा भगवान असुरों को संहार करते हैं, उस चक्र को बुलाया। तब नित्यानंद प्रभु उनका पैर में गिर गया और बताया, आप प्रतिज्ञा किए हैं कि इस युग में आप अस्त्र धारण नहीं करेंगे, आपका अस्त्र असुर नाश करने के लिए इस युग में आपका अस्त्र होगा प्रेम। तो उस प्रेम के द्वारा ही उसको आप, उसका जो आसुरिक वृत्ति है उसको आप नाश कीजिए। तब महाप्रभु ने अस्त्र को वापस कर दिया, चक्र को, और तब जगाई और माधाई। ये देखते ही चैतन्य महाप्रभु का पैर में गिर गया और नित्यानंद प्रभु ने बोला, जगाई जब मारने के लिए आया था तो माधाई ने उनको उनको निवारण किया। तो महाप्रभु माधाई के प्रति प्रसन्न हुआ और जगाई भी नित्यानंद प्रभु को पैर में गिर कर, पैर पर गिरकर माफी मांगा। तो महाप्रभु ने बोला, ठीक है, तो मैं को मैं माफ कर दिया, बल्कि अब से और कभी बुरा काम मत करो, अब भगवान के भक्ति करते रहो। ऐसे जगाई और माधाई भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त बन गया। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने लगा और तुरंत ही सारे नवद्वीप में सारे लोग कृष्ण भक्त बन गए और हरिनाम कीर्तन करने लगे। ऐसे महाप्रभु कीर्तन करते थे, दिन को नगर में संकीर्तन करते थे और रात को श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन करते थे, सोते नहीं, 24 घंटा कीर्तन होता। ये भक्ति का फल है, नींद नहीं होता, भूख कभी कभी लगता था। एक दिन सब भूखा सब कीर्तन करने के पश्चात सबको बहुत भूख लगा, तो बोला, दोपहर हो गया तो बोला कि हमको बहुत भूख लगा है। तो महाप्रभु बोला, ठीक है चलो। तो जहां थे वहां बैठ गए सब, तुम लोग बैठो, महाप्रभु ने बताया। और वहां एक आम का आठी था, उसको महाप्रभु ने जमीन में गाड़ दिया और तुरंत ही वो उससे एक पैर निकल गया और पैर बढ़ने लगा, बढ़ते 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 एक विशाल वृक्ष बन गया और सारे वृक्ष आम से भर गया। और महाप्रभु सबको बोला, ठीक है आप खाओ आम। और जब वो खाने लगा तो देखा कि आम का छाल नहीं है, सारे आम ही आम है और भीतर में आठी भी नहीं है, सारे आम ही आम है। तो आम जैसे महाप्रभु सबको खाने का बंदोबस्त किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम महाप्रभु के संकीर्तन में योगदान करेंगे तो खाने का चिंता नहीं करना होगा, महाप्रभु की कृपा से तुरंत ही सब कुछ मिल जाएगा। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरे।